शांति। वैश्विक एकता के लिए काल चक्र का रहस्य, इस विषय पर संबोधन करने के लिए हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी आए हैं। सभी करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं। वैसे तो हमने देखा है कि बहुत लोगों में सृष्टि के आदि के बारे में जानने में बहुत रुचि रहती है। आदि में क्या था, मध्य में क्या हुआ, अंत में क्या होगा, तो ये पूरा ही रहस्य स्वयं भगवान ने बताया है, सृष्टि चक्र का रहस्य। आज हम दीदी जी के माध्यम से काल चक्र का रहस्य जानेंगे। और जो काल चक्र के ज्ञान को जान लेता है वो सारे चक्रों से अपने आप ही छूट जाता है। तो इसीलिए हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे इस सेशन को, वैश्विक एकता के लिए सृष्टि चक्र का ज्ञान, इस विषय पर आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी के द्वारा। फिर से हम एक हाथ के ताली से दीदी का वेलकम करते हैं। और जो भी बच्चे यहाँ पर बैठे हो, दादी जी मीटिंग हॉल में पहुंच जाओ, आपका क्लास वहाँ पे शुरू होगा।
ओम शांति। सभी एक बार फिर से बोलेंगे ओम शांति। अभी तक राजयोग में हमने समझा है स्वयं की सत्य पहचान, परमात्मा की सत्य पहचान, क्योंकि राजयोग है ही आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध। राजयोग में जितना स्वयं की पहचान और परमात्मा की पहचान का महत्व है, उतना ही समय की पहचान का भी महत्व है कि वर्तमान समय कौन सा समय चल रहा है और इस समय के अनुसार हमारा पुरुषार्थ और कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो जब हम समय की बात करते हैं तो समय के लिए कहते हैं, बहुत अच्छा गीत भी हम समय के ऊपर सुन रहे थे कि समय की गति बहुत बलवान है ना? सुना, समय पंछी की तरह है, उड़ जाता है हमारे हाथों से। तो समय की गति ऐसी है और समय किसी का इंतजार नहीं करता, हमें समय के अनुसार चलना होता है, समय हमारे अनुसार नहीं चलता है। फिर समय पर कार्य करने से हम सफल होते हैं। आज एक विद्यार्थी परीक्षा के समय पढ़ता है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, अगर वो ना पढ़े तो उसका एक साल बर्बाद हो सकता है। ऐसे ही किसान समय पर फसल बोता है तो फसल काट सकता है, लेकिन अगर वो फसल काटने के समय फसल बोने जाएगा तो निश्चित है कि उसको वो फसल नहीं मिल पाएगी। ऐसे एक बिजनेसमैन है, बिजनेस की सीजन में बिजनेस कर लेता है तो वो सीजन में ही साल भर की कमाई हो जाती है, लेकिन अगर सीजन में नहीं तो फिर पूरा साल मेहनत करते रहो तो भी उतनी कमाई नहीं होगी। तो समय की बात है कि किस समय क्या करना चाहिए। और समय के लिए कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। तो जो हम कल करना चाहते हैं उसे हम आज ही करें और आज वाला अभी करें, क्योंकि इंसान की टालने की प्रवृत्ति होती है और अगर हम शुभ कार्यों में देरी करते हैं तो उसमें ऐसी बाधाएं आती हैं कि वो कभी हो ही नहीं पाता है। तो इसीलिए कहा कि बुरे कार्य हैं तो जितना हो सके टालना चाहिए, लेकिन अगर शुभ कार्य है तो उसको अभी ही जब संकल्प आता है तभी उसको कर देना चाहिए। फिर समय कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है, समय चक्र में चलता है, टाइम इज साइक्लिक। तो सीधी रेखा माना एक बिंदु से शुरू हुआ दूसरे बिंदु पर पूरा हो गया, ये समय की गति नहीं है। समय कैसे चलता है, जैसे चक्र में देख रहे हैं हमने, इस बिंदु से शुरू किया तो पूरा घूमते हुए चक्र में हम फिर से कहाँ पहुंच जाएंगे, उसी बिंदु पर पहुंच जाएंगे ना। चक्र का ये मतलब है, यानी वो पुनरावृत होता है और इसीलिए हमारी घड़ी गोल है। अगर अभी 10 बजे हैं तो कल भी 24 घंटे पहले 10 बजे थे और अब से 24 घंटे बाद भी 10 बजेंगे। तो ये दिन और रात का चक्र है, ये पुनरावृत होता है, वही समय फिर से हर 24 घंटे के बाद आता रहेगा और ये अनवरत चलता रहता है। ऐसे ही सप्ताह का चक्र है ना। आज अगर शुक्रवार है तो फिर कल भी, कल नहीं एक हफ्ते पहले 7 दिन पहले भी शुक्रवार था, अब से 7 दिन बाद भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। ऐसे ही अभी मई का महीना है, 12 महीने पहले भी मई का महीना था, है ना। ये 12 महीने का चक्र, साल का चक्र है, फिर अब से 12 महीने बाद भी क्या होने वाला है, फिर से मई मास होने वाला है। ऐसे ही 10 साल का चक्र है, फिर 100 साल जिसे हम शताब्दी कहते हैं, फिर 1000 साल जिसे हम सहस्राब्दी कहते हैं, और फिर ये 5000 साल का ये सृष्टि का चक्र है। तो जब मैं कहती हूँ ये 5000 साल का सृष्टि का चक्र है तो कहने का मतलब क्या है, आज जो समय है आज से 5000 साल पहले भी था और अब से 5000 साल बाद भी होगा। चक्र का यही मतलब है कि वही समय फिर से पुनरावृत होता है। तो वर्तमान समय कौन सा समय है, कौन सा युग है, कौन सा युग है, कलयुग। सबको पता है कलयुग, तो अभी कलयुग है, 5000 साल पहले भी कलयुग था और 5000 साल बाद भी फिर से कलयुग होगा। तो फिर कई कहते हैं ये 5000 साल क्यों कहा, तो अगर हम 24 घंटे दिन के समय की बात करें तो क्या हम कभी प्रश्न उठाते हैं 24 घंटा क्यों कहा। हम कहते हैं हम बहुत व्यस्त रहते हैं, दिन 50 घंटे का क्यों नहीं है, तो हो जाएगा क्या। तो वो प्रकृति की ओर से निश्चित है 24 घंटे का दिन और रात का चक्र क्यों है, क्योंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्र लगा लेती है, अपनी कक्षा में घूमती, अपनी ही अक्ष पर घूमती है। तो जो हिस्सा सूर्य के सामने है वो दिन है, और जो हिस्सा सूर्य के पीछे है वो रात है। जो विज्ञान पढ़ते हैं वो ये जानते हैं। ऐसे ही साल का चक्र 365 दिन का है, तो वो 365 दिन क्यों है? हाँ, इतना ऑड नंबर क्यों सीधा 400 का साल नहीं बना दिया? हम कहते हैं कभी, क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो भी प्रकृति की ओर से निश्चित है। तो कैसे निश्चित है? क्योंकि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर भी चक्र लगाती है, और जब वो सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है उसमें उसको 365 दिन का समय लगता है। तो जब हमने 5000 साल कहा तो ये भी प्रकृति की ओर से निश्चित है। कैसे? कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी केवल एक कक्षा में चक्र नहीं लगाती, लेकिन सभी कक्षाओं में चक्र लगाती है, और वो सभी कक्षाओं में चक्र लगाते हुए फिर से अपनी मूल कक्षा में आने में उसे 5000 साल का समय लगता है। और इसीलिए ये सृष्टि चक्र कितना है? 5000 साल का चक्र है। और जो भी चक्र हैं, हाँ, प्रकृति में भी चक्र चलते हैं, हमारा जीवन चक्र भी है, उन चक्रों की अवस्थाएं क्या होती हैं? अपनी प्रारंभिक अवस्था में वो बहुत शुद्ध हैं, श्रेष्ठ हैं, शक्तिशाली हैं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है उसमें वो शक्तियाँ क्षीण होने लगती हैं, वो कमज़ोर पड़ने लगता है, उसमें अशुद्धि आने लगती है, और अंतिम समय तक आते आते अगर उसे पुनर्जीवित नहीं किया गया तो वो चक्र समाप्त हो जाता है। पर अगर वो फिर से रेज्यूविनेट हो जाता है तो फिर वो चक्र पुनरावृत होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं रात और दिन का चक्र है। तो रात और दिन के चक्र में प्रारंभ होता है प्रातः काल से। प्रातः काल का समय बहुत शुद्ध समय है, सात्विक समय है, है ना। मनुष्य उस समय भक्ति पूजा पाठ करते हैं, मन में कोई बुरा ख्याल आ जाए तो भी अच्छा नहीं लगता है, लगता है इस समय क्यों मेरे मन में ये बुरा ख्याल आया, क्योंकि वो समय शुद्ध समय है। लेकिन फिर सारा दिन हम काम करते हैं, अपनी शक्तियों को प्रयोग करते हैं, तो शाम होते होते हम थक जाते हैं, तो अब विश्राम करते हैं रात्रि के समय, तो हमारी जो ऊर्जा है वो फिर से हम प्राप्त करते, विश्राम के द्वारा हम उसे फिर से प्राप्त कर लेते हैं, और फिर सूर्योदय के साथ नया दिन शुरू होता है और हम फिर से तैयार हैं। लेकिन जो रात्रि का समय है वो सबसे तमो प्रधान समय होता है, यानी जो भी गलत काम करते हैं इंसान ज्यादातर रात्रि के समय करते हैं। कोई जुआ खेलेगा, कोई चोरी करेगा, डकैती करेगा, शराब पिएगा, और भी गलत काम करते हैं, तो कौन सा समय होता है ज्यादा? रात्रि का समय। तो ये अंत है, दिन का जो अंत का समय है वो पतित, और जो प्रारंभ है वो पवित्र है। तो ये चक्र की गति है कि जो उसका प्रारंभ होता है वो शुद्ध होता है, श्रेष्ठ होता है, लेकिन जो उसका अंत होता है उसमें क्योंकि शक्तियां कम होती हैं तो फिर उसमें हम कहेंगे कमजोरी आ जाती है। फिर ऐसे ही प्रकृति में पानी का चक्र चलता है। पानी बरसने का प्रक्रिया क्या है? समुद्र से बादल भाप बनते हैं, पानी भाप बन के बादल का रूप लेता है, और फिर वो बादल कहीं पहाड़ों से टकराकर बरसते हैं, तो वो झरने के रूप में जो पानी बहता है वो बिल्कुल शुद्ध पानी होता है। जो बारिश का पानी बरसता है वो शुद्ध पानी होता है, लेकिन जब वो मैदान से होकर के गुजरता है, नदी का रूप ले लेता है, तो वो नदी अनेक गांव शहरों से गुजरती है, लोग उस पानी को प्रयोग करते हैं तो उसमें गंदगी पड़ने लगती है, और वही पानी जब समुद्र तक पहुंचता है, यानी नदी जब अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचती है, तब तक वो सबसे गंदा जल होता है। अब यहां पर फिर से सूर्य क्या करता है, पानी को भाप बनाता है और जो गंदगी है वो नीचे रह जाती है और फिर से शुद्ध पानी बादल का रूप लेता है और बरसता है। तो ये पानी का चक्र भी प्रकृति में चलता रहता है। ऐसे ही अगर हम अपने जीवन और मृत्यु के चक्र को देखें, तो जब जन्म होता है तो बच्चा बहुत शुद्ध है, पवित्र है, इसीलिए उसे भगवान का रूप मानते हैं और इसीलिए बच्चे पर सबका प्यार होता है, कोई भी बच्चा हो। लेकिन धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, युवावस्था में आने लगता है, तो उसे बुराइयों का ज्ञान होने लगता है, शक्तियां क्षीण होती हैं, प्रौढ़ावस्था आती है, बुराइयों के अनुभवी भी बन जाते हैं, यूज करते हैं बुराइयों को, अनुभवी बन जाते हैं, और फिर और शक्तियां तेजी से क्षीण होती हैं, वृद्ध अवस्था आ जाती है। अब वृद्ध अवस्था को पुनः हम बाल्य अवस्था में नहीं ला सकते, तो क्या होता है, इस चक्र का अंत होता है और अंत होता है मृत्यु के द्वारा, और फिर उसके बाद आत्मा पुनर्जन्म लेती है और फिर से नया जीवन चक्र नए शरीर के द्वारा शुरू होता है। तो इस तरह से ये सृष्टि का भी चक्र है। तो ये विज्ञान का एक नियम है जिसको लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। इस नियम के अनुसार ही क्लोज सर्किट में, यानी जो चक्र है, जो बंद निकाय है, उसमें ऊर्जा का धीरे धीरे क्षय होता है और अंत तक आते आते वो बिल्कुल समाप्त होने लगती है। लेकिन अगर उस ऊर्जा को, जैसे हम कहते हैं, फिर से रिचार्ज कर दिया जाए, तो फिर से वो चक्र, जैसे बैटरी को हम रिचार्ज करते हैं तो फिर से हम उसे यूज कर लेते हैं, ऐसे ही वो चक्र फिर से पुनरावृत हो जाता है। तो यही सृष्टि के चक्र की स्थिति है कि सृष्टि का चक्र भी अपने प्रारंभिक अवस्था में बहुत शुद्ध, श्रेष्ठ, शक्तिशाली है और इस समय को सतयुग का समय कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, मनुष्य आत्माओं की शक्तियां क्षीण होने लगती हैं और अंत समय तक आते आते वो पूरी तरह से पतित तमो प्रधान हो जाती हैं। तो उस युग को हम, आपने बताया, हम क्या कहते हैं, कलयुग का समय कहते हैं। तो चार युग हैं सृष्टि चक्र में, जिसे स्वास्तिक से दिखाया है। स्वास्तिक का जो चिन्ह है, हमारी भारतीय संस्कृति में एक शुभ चिन्ह माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य, मंगल कार्य करते समय हम ये स्वास्तिक का चिन्ह निकालते हैं और ये स्वास्तिक का चिन्ह जो है वो शुभ कार्यों का प्रतीक है, जो संस्कृत के सुअस्ति से आया है। ये संस्कृत शब्द है जो सुअस्ति से बना है। तो संस्कृत में सु का माना शुभ और अस्ति माना है। तो इसका मतलब ये जो स्वास्तिक है, ये जो काल चक्र का, समय चक्र का प्रतीक है, इसमें जो भी घटनाएं घट रही हैं वो हमारे लिए शुभ है। तो ये काल चक्र का प्रतीक क्यों है, क्योंकि जो स्वास्तिक की चार भुजाएं हैं वो क्लॉकवाइज घूमती हैं और हरेक युग में आत्मा की स्थिति का प्रतीक है और ये चार बराबर बराबर भागों में बटा है। तो ये 5000 वर्ष को चार बराबर भागों में बांट रहा है, चार युगों को। तो एक युग की आयु है 1250 वर्ष। युग है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो इसके अनुसार समय चक्र की जो घटनाएं हैं, हम सब जब 5000 साल के चक्र से गुजरते हैं तो अनेक घटनाएं जीवन में घटती रहती हैं, लेकिन वो हर घटना, चाहे वो बुरी क्यों ना हो, लेकिन हमारे लिए उसमें शुभ है। तो कैसे शुभ या भला है, वो एक बोध कथा आती है शास्त्रों में, उससे हम समझ पाएंगे कि एक बार एक राजा का बहुत बुद्धिमान मंत्री था, तो वो उसे हमेशा अपने साथ रखता था और अपने हर कार्य में वो उसकी सलाह लेता था। तो एक बार राजा की उंगली कट गई, तो उसने अपने मंत्री को दिखाया, मंत्री साथ में था, तो मंत्री तो ज्ञानी था, इसलिए उसने कहा महाराज जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो राजा को गुस्सा आ गया, मेरी उंगली कट गई और मंत्री कहता है जो हुआ वो अच्छा हुआ, अच्छा कैसे हुआ, तो ये मेरा अभी विश्वास पात्र नहीं रहा। तो गुस्से में आकर उसने सैनिकों को आदेश दिया इनको जेल में बंद कर दो। अब उसको जेल में बंद कर देते हैं। अब ये राजा को शिकार खेलने का शौक होता है, तो कुछ दिनों के बाद वो जंगल में शिकार खेलने जाता है। आज वो अकेला ही निकल जाता है, तो शिकार का पीछा करते करते घने जंगल में, और वहां कबीले के लोग रहते थे। अब वो कबीले वाले उस दिन अपनी देवी को मनुष्य की बलि चढ़ा के खुश करना चाहते थे, तो किसी मनुष्य को ढूंढ रहे थे। तो ये राजा पकड़ा जाता है। तो जब राजा को पता चलता है मुझे बलि चढ़ाने के लिए पकड़ा गया, तो उनको समझाने की कोशिश करता है मैं राजा हूं, आप मेरी बलि चढ़ाओगे। तो वो कहते हैं राजा तो सर्वश्रेष्ठ होता है, राजा जैसी बलि पाके तो हमारी देवी बहुत प्रसन्न होगी, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ले जाते हैं उसको मंदिर में। अब वहां पुजारी देखता है, क्योंकि बलि का नियम होता है कि बलि का अंग भंग नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए पुजारी देखता है बलि संपूर्ण है या नहीं, तो देखता है इसकी तो उंगली कटी हुई है। तो उसने कहा कि देवी इस बलि को स्वीकार नहीं करेगी, तो देवी नाराज ना हो जाए इसलिए इसको छोड़ दो, कोई दूसरे मनुष्य को ढूंढो। तो छोड़ देते हैं उसको। और वो जब अपने राज्य की ओर लौट रहा होता है, तो उसे मंत्री की बात याद आती है जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो सोचता है सचमुच आज उंगली कटी हुई थी, इसीलिए बलि चढ़ने से बच गई, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं था। तो जैसे ही वो अपने राज्य में पहुंचता है, तो वहां जेल में मंत्री को पहले बाहर करता है और उससे क्षमा मांगता है। कहता है मंत्री जी मुझे आज आपकी बात समझ में आई। और सारी घटना सुनाता है और कहता है कि सचमुच आपने ठीक कहा था, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि मैंने आपको जेल में बंद किया, ये तो आपके साथ बुरा ही हुआ। उसने कहा नहीं महाराज, ये भी अच्छा हुआ, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ जाता हूं, आज मैं जेल में था इसीलिए मैं आपके साथ नहीं था। अगर मैं आपके साथ होता तो आपकी बजाय मेरी बलि चढ़ जाती, क्योंकि मैं तो संपूर्ण था। तो फिर दोनों ही बच गए। देखने में घटना कैसी थी, दोनों के लिए बुरी थी, लेकिन दोनों का ही भविष्य में उसके पीछे भला छुपा हुआ था। और उसके कारण हम कहेंगे कि कोई भी घटना हमारे जीवन में घटती हो सकता है, वर्तमान में हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन भविष्य में जरूर उसके पीछे हमारा कोई ना कोई भला होता है जो हमें बाद में समझ में आता है। और नहीं तो यही परिस्थितियां जो हैं वो हमें अनुभवी बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि जीवन का जो पाठ हम पढ़ते हैं वो हम ऐसी ही परिस्थितियों से पढ़ पाते हैं। ये जीवन की पाठशाला है जिसे हम कहेंगे। भले हम कितनी भी किताबें पढ़ लें, उससे शायद हम उतना नहीं सीखते जितना कि जब हम प्रैक्टिकल में ऐसी स्थितियों से गुजरते हैं, वो हमें जीवन में सशक्त बनाता है या इस योग्य बना देता है। तो कुछ ना कुछ भला जरूर हमारा उससे होता है। तो ये जो चार युग हैं सृष्टि चक्र में, सतयुग त्रेता युग द्वापर कलयुग, तो सतयुग जो है वो इस सृष्टि चक्र का आदि काल का समय है। आदि काल यानी जब आत्माएं परम धाम से पहली बार इस धरती पर आती हैं, तो वो आत्माओं की क्वालिफिकेशन क्या है, वो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम होती हैं। और ये योग्यताएं देवी देवताओं की होती हैं, इसीलिए वो साधारण मनुष्य नहीं है लेकिन देवी देवता है। तो सतयुग जो है वो देवी देवताओं की सृष्टि है और उसका प्रारंभ श्री कृष्ण से होता है। फिर श्री कृष्ण के साथ अन्य देवताएं भी आते हैं और यही श्री कृष्ण बड़े होकर के श्री नारायण कहलाते हैं, जिनको हम सूर्य नारायण या सत्य नारायण भी कहते हैं। तो हम सत्यनारायण की कथा भी करते हैं ना, घरों में, कई घरों में करते हैं, तो उनके नाम के आगे ही सत्य शब्द लगाते हैं और किसी देवता के नाम के आगे हम सत्य शब्द नहीं लगाते, क्योंकि वो सतयुग में हुए, वो सतयुग के महाराजन, विश्व महाराजन हैं या वैकुंठ के वो मालिक हैं और वो सूर्यवंशी हैं, इसलिए उन्हें हम सूर्य नारायण भी कहते हैं। और यहाँ जो स्वास्तिक की भुजा है वो राइट एंड अप है, तो स्वास्तिक की भुजा राइट एंड अप माना, एक तो राइट साइड शुभ का प्रतीक है, तो ये सृष्टि का शुभ समय है। और अप मतलब हाथ को हम इस पोजीशन में तब ले जाते हैं जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो आशीर्वाद प्राप्त ये आत्माएं हैं, इनको परमात्मा का आशीर्वाद मिला हुआ है और इसीलिए ये सर्व गुण संपन्न है, सर्व प्राप्ति संपन्न है, सर्व भाग्य इन्हें प्राप्त है और ये 16 कला संपूर्ण है। 16 कला संपूर्ण का मतलब पूर्णता से है, जैसे जब चंद्रमा पूर्णिमा का चांद होता है तो हम उसको कहते हैं 16 कला से चंद्र खिला है। अगर कोई बात पूरी सच है तो हम कहते हैं 16 आने सच है। किसी ने पूरा श्रृंगार किया है तो हम कहते हैं 16 श्रृंगार किया है। तो पूर्णता, जैसे पुराने जमाने में एक पूरे रुपए में 16 आने होते थे, तो ये 16 अंक कोई वो 16 संख्या वाली बात नहीं है लेकिन ये पूर्णता का परिचायक है। तो मनुष्य आत्मा कलाओं में पूर्ण होती है, इसीलिए उसको 16 कला कहा। फिर वो संपूर्ण निर्विकारी है, देवी देवताओं में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत अंश वंश भी नहीं है, इसीलिए वहां कोई पाप नहीं होते, कोई अपराध नहीं होते, कोई पापाचार दुराचार वहां है नहीं, इसीलिए वहां ना जेल होता है, ना पुलिस होती है, ना कोर्ट होता है, ना जज वकील होते हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकता ही नहीं है। मनुष्य विकारों के वश होकर के ही पाप करते हैं, अपराध करते हैं, तो जब ये है ही नहीं किसी भी मनुष्य के अंदर तो ये शब्द ही डिक्शनरी नहीं होती है वहां पर। फिर वो सर्व प्राप्ति संपन्न है, यानी सब प्रकार के सुख, जो 4 प्रकार के सुख मनुष्य के जीवन में है वो उन्हें संपूर्ण प्राप्त है, तन मन धन और संबंध। तन का सुख है निरोगी काया, इसीलिए कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, तो स्वस्थ और सुंदर तन होता है देवी देवताओं का, ये तन का सुख है, तो बीमार कभी नहीं होते, लंबी आयु जीते हैं, 150 वर्ष की आयु सतयुग में होती है देवी देवताओं की, और इसीलिए 1250 साल में सिर्फ 8 जन्म होते हैं। तो तन का सुख है, मन का सुख है कि मन सदा ही शांत चित्त है, मन सदा ही प्रसन्न है, सुखी है, और यही कारण है कि आज भी जब हम देवी देवताओं के दर्शन करने मंदिरों में जाते हैं तो क्या क्या चाहते हैं उनसे, हाँ, मंदिर में दर्शन करने क्यों जाते हैं, क्या मिलता है, दर्शन करके क्या मिलता है, क्या मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, और फिर वो देवता हैं, देने वाले हैं, तो हम सोचते हैं हमारी जो भी मनोकामना है वो पूरी करेंगे, तो हम इसीलिए कुछ ना कुछ मन में इच्छा लेकर के उनके सामने जाते हैं, फिर भले धक्के खाकर के भी हमें दर्शन करना पड़े। आज के समय में जो मुख्य दिन होते हैं ना मंदिरों में, बहुत भीड़ होती है, तो एक धक्के में अंदर होते हैं और दूसरे धक्के में बाहर होते हैं, तो हम जितना समय खड़ा होना चाहते हैं देवता के सामने उतना समय हम खड़ा भी नहीं हो सकते, और फिर जितनी देर मिलती है उसमें भी आंख बंद कर लेते हैं, तो कौन किसका दर्शन कर रहा है? हम उनके दर्शन करने की बजाय वो हमारे दर्शन कर रहे हैं। तो लेकिन हम समझ सकते हैं कि वो एक पल भी जो हमें मिला उसमें भी हमें हमें लगता है हमें उनका आशीर्वाद मिल गया, हमें वो सुख मिल गया। तो जब वो चैतन्य में रहे होंगे तो वो सचमुच कितने सुखी और कितने शांत होंगे कि उनका चेहरा, आज उनकी जड़ मूर्ति भी हमें इतना सुख का अनुभव कराती है। तो वो मंदिर जो यादगार हैं, वो हमारे पूर्वज हुए तभी तो यादगार बनी, किसी की यादगार ऐसे ही नहीं बनती है। आज महात्मा गांधी जैसे कोई इंसान इस दुनिया में हुए तभी तो हम महात्मा गांधी को याद करते हैं, उनके मेमोरियल बनाते हैं या उनके स्टैचू बनाते हैं, सभी के तो नहीं बनाते। तो क्यों बनाते हैं? जिन्होंने कुछ विशेष किया है या कोई विशेष जो होकर के गए हैं उनके ही यादगार हम बनाते हैं। तो देवी देवताएं ऐसी विशेष श्रेष्ठ आत्माएं थी, दिव्य आत्माएं थी जो हमारे पूर्वज रहे, कि हम उनको बहुत श्रद्धा से, सम्मान से, प्यार से मंदिरों में उनकी पूजा करते हुए हम उन्हें याद करते हैं, है ना। साधारण रीति से हम उनका स्टैचू नहीं खड़ा कर देते, तो ये समझ सकते हैं कि वो कितने श्रेष्ठ रहे होंगे जब वो अपने जीवन में रहे। ऐसे ही धन की कोई कमी नहीं, अक्की चार धन के मालिक होते हैं, धन मिट्टी के समान है, इसीलिए वहां सोने चांदी के महल बनाते हैं सतयुग में। आज हम जो मकान बनाते हैं वो मिट्टी के, ईंट के, पत्थर के बनाते हैं, है ना, सीमेंट के बनाते हैं, लेकिन वहां इतना सोना है कि सोने चांदी के वो महल बनाते हैं। और प्रजा भी यथा राजा तथा प्रजा है, यानी प्रजा में भी कोई गरीब नहीं होता। उसके लिए कहते हैं राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। तो ये वो समय था कि जब हर मनुष्य सब प्रकार से सुखी है, धन की भी संपन्नता में कोई कमी नहीं, और फिर संबंध संबंध भी दैवी संबंध है, निस्वार्थ स्नेह देने वाले, है ना। आज के संबंध कैसे होते हैं? स्वार्थ से प्यार होता है, जब तक स्वार्थ पूरा हो रहा है तब तक प्यार, और जब स्वार्थ खत्म हो गया तो प्यार भी खत्म। लेकिन वो उस युग में ऐसा नहीं है, निस्वार्थ स्नेह और सहयोग संबंधों में रहता है, इसलिए संबंधों में भी पूर्ण सुखी और संतुष्टि रहती है। तो ये समय जो है सतयुग का जो समय है, यहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत होता है, यानी एकता होती है। हम वैश्विक एकता की बात कर रहे हैं ना, तो संपूर्ण विश्व एक है, यानी एक ही धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है, संसार में और कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं। एक राज्य है, माना श्री लक्ष्मी श्री नारायण का ही राज्य है, अखंड भारत है, भारत ही विश्व है, और विश्व का कोई देश होता ही नहीं। ये वो समय है, और एक ही भाषा होती है जो देवी देवताओं की देवनागरी भाषा होती है, और सर्व प्रकार से संपूर्ण सुख शांति पवित्रता का समय है, और प्रकृति भी पूरी तरह सुखदायी है। वहां पर सदा बाहरी मौसम होता है, ऐसे नहीं बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ती है तो भी इंसान दुखी होता है, ऐसे नहीं बहुत सर्दी पड़ रही है तो भी इंसान दुखी होता है, हाँ, या फिर बारिश में इतनी बारिश आ गई कि बाढ़ हो गई, है ना। तो प्रकृति भी दुख देती है कलयुग में, लेकिन सतयुग में प्रकृति सदा ही सुखदायी है। ये वो समय है जो संसार के स्वर्ग का समय कहलाता है, जिसे हम ब्रह्मा का दिन कहते हैं। और फिर 1250 वर्ष के बाद दूसरा युग आता है, और ये युग है त्रेता युग। 1250 वर्ष में आत्मा की कुछ शक्तियां यूज हो गई, तो अभी जो दूसरा युग आता है उसमें जो स्वास्तिक की भुजा है वो राइट एंड डाउन है, अभी भी राइट है, माना अभी भी संसार में शुभ समय है, लेकिन डाउन होने का मतलब कुछ कमी आ गई है। तो क्या कमी आती है? दो कलाओं की कमी। जो 16 कला संपूर्ण आत्मा है वो अभी 14 कला संपूर्ण हो जाती है, और इसीलिए इसको त्रेता युग कहते हैं। त्रेता शब्द संस्कृत के त्रुटि से आया है। त्रुटि का मतलब होता है ऐसी कमी जो दिखाई नहीं देती है, है लेकिन इतनी थोड़ी है कि हम पता नहीं लगा सकते। मानो जैसे पूर्णिमा के नेक्स्ट डे का चांद होता है तो उसमें एक लकीर कम हो जाती है, लेकिन फिर भी दिखता कैसे है, जैसे पूर्णिमा का ही चांद है। तो ऐसे ही आत्मा में थोड़ी सी कमी आती है, बाकी सब प्राप्तियां समान है। वही सर्व भाग्य है, तन मन धन संबंध के सुख है, संपूर्ण निर्विकारी हैं, एक धर्म एक राज्य एक कुल एक मत सब कुछ समान है। लेकिन यहाँ डिनाइस्टी चेंज हो जाती है। डिनाइस्टी हो जाती है श्री राम की, श्री लक्ष्मी श्री नारायण की डिनाइस्टी बदलकर श्री राम की डिनाइस्टी होने से उन्हें हम कहते हैं श्री रामचंद्र जी। तो यानी यहां से चंद्र वंश शुरू होता है, और एक युग की में जो आयु है इस युग में वो थोड़ी कम होती है, 150 से 125 साल आयु हो जाती है, इसलिए जन्म थोड़े ज्यादा होते हैं। तो 12 जन्म होते हैं त्रेता युग में, और राम के 12 वंश चलते हैं, और इस तरह से त्रेता युग पूरा होते होते 2500 साल तक हम कहेंगे कि ये संसार के स्वर्ग का समय है, जहां आत्माएं संपूर्ण सुखी हैं, दुख का नाम निशान भी जहां नहीं होता है। और फिर तीसरा युग आता है 2500 साल के बाद। अब संसार का आधा समय पूरा हो गया तो आत्मा की भी आधी कलाएं कम हो गई। जो 16 कला वाली आत्मा थी उसकी 8 कला ही रह जाती है, तो आधी कला कम होने से वो कमजोरी आत्मा में आ गई, तो विकार प्रवेश होने लग जाते हैं। और सबसे पहले जो विकार आता है वो है देह अभिमान। देह अभिमान माना दैहिक दृष्टि होने लगती है, एक दो को देह देखना शुरू कर देते हैं, ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। देवी देवताओं की आत्मिक दृष्टि होती है, लेकिन द्वापर युग से ये दृष्टि बदलती है, तो फिर भेदभावपूर्ण व्यवहार होने लगता है, क्योंकि देह के स्तर पर तो बहुत अंतर है, ये ऊंच है ये नीच है, ये अमीर है गरीब है, राजा है रंक है, ब्राह्मण है शूद्र है, स्त्री है पुरुष है, काला है गोरा है, छोटा है लंबा है। तो क्या होगा, जितना भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है उतना ही पाप होने लगते हैं, और अब पाप कर्मों का फल सामने आता है तो दुख के रूप में आता है। अब मानो मेरा शरीर स्वस्थ है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर मुझे कोई तकलीफ होती है, सिर दर्द हुआ बुखार हुआ, तो हमें लगता है ना कुछ गलत हो रहा है, तो फिर हम डॉक्टर को याद करते हैं कि इसका इलाज कराएंगे तो फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। यहां भी जब दुख होता है तो आत्मा को समझ में आता है कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि अब तक 2 युगों तक दुख अनुभव ही नहीं किया, और थोड़ा भी दुख होता है तो पता चलता है, तो यहां पर फिर दुख है तो कौन याद आएगा, कौन याद आएगा, कौन दुख दूर करता है, भगवान। तो सबसे पहले भगवान को याद करना द्वापर युग में शुरू करते हैं, और ये जो स्वास्तिक की भुजा है वो इस पोजीशन में है, हाथ को इस पोज में हम तब लाते हैं जब हम किसी से कुछ लेते हैं, है ना, लेने के लिए ही हाथ ऐसे करते हैं। तो भगवान से लेना माना भगवान हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करे, हमारा दुख दूर करे। तो ये देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, लेफ्ट टर्न हो गया, एक तो स्वास्तिक की भुजा लेफ्ट टर्न हो गई। तो वाम मार्ग में जाने का मतलब संसार में अशुभ समय की शुरुआत हो गई, और भक्ति पूजा पाठ भी शुरू हो गया, और उसमें भी सबसे पहले अव्यभिचारी भक्ति करते हैं, यानी निराकार परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो स्वयं ही जो पूज्य थे वो फिर पुजारी बन जाते हैं, खुद ही देवी देवता थे, पूज्य थे, और द्वापर युग में आकर के अब देवी देवता नहीं रहते, क्योंकि जो देवी देवताओं के गुण है वो विकारों के कारण खत्म हो गए, तो अब हिंदू कहलाने लगते हैं, वही देवी देवताएं हिंदू कहलाने लगते हैं। इसीलिए हमारे जो पूर्वज हैं वो देवी देवता हैं और हम उनके वंशज हैं, इसीलिए कई फैमिलीज में कुल देवता होते हैं। हैं किसी के कुल देवता? हाथ उठा सकते हैं जो जिनके कुल देव, देखो तो मतलब वो हमारे पूर्वज हो गए ना, जिनके भी कुल देवता हैं। तो हम देवी देवताओं के वंशज हैं, लेकिन अब हम देवी देवता नहीं कहला सकते, तो उसको नाम मिला नया हिंदू धर्म। और अब जब हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान जरूर हमारे पिता हैं, तो हमारी सहायता तो करेंगे, लेकिन दुनिया में इतना पाप अभी नहीं है कि उसे खुद आना पड़े, तो क्या करते हैं परमात्मा, वो धर्म पिताओं को भेजते हैं। तो धर्म पिताएं अलग अलग स्थान पर, क्योंकि सृष्टि भी बढ़ती जा रही है तो विस्तार के साथ साथ धर्म की आवश्यकता पड़ती है, तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग धर्म पिता आते हैं और वो धर्मों की स्थापना होने लगती है। तो सबसे पहले आते हैं इब्राहिम और वो इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। तो हिंदू धर्म के बाद जो नेक्स्ट धर्म इस संसार में आया वो है इस्लाम धर्म, और इस वहां वो देखते हैं कि नियम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो नियम देते हैं, 10 कमांडमेंट्स जिनको बोलते हैं, और समाज में व्यवस्था हो उसका वो प्रयास करते हैं। और इस तरह से आज भी हम देखते हैं कि इस्लाम में लोग नियम के बहुत पक्के होते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा धर्म आया वो है महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म। तो महात्मा बुद्ध आए आज से 2250 साल पहले, उन्होंने देखा कि जो समाज है, हमारी जो संस्कृति थी वो वैदिक संस्कृति हो गई थी, वेदों को पढ़ना शुरू कर दिया था, तो देखा वैदिक संस्कृति में कर्म कांड है, यहाँ पर पशु बलि नर बलि देने लगे हैं, और राजाएं जो हैं वो चक्रवर्ती बनने के लिए दूसरों पर आक्रमण करते हैं, जिसमें बहुत निर्दोष उस हिंसा में मारे जाते हैं। तो उन्होंने उस समय की आवश्यकता के अनुसार उपदेश दिया, यानी कर्म का उपदेश दिया, अहिंसा का उपदेश दिया, सत्य का उपदेश दिया, और पूरे पूर्वी संसार में बौद्ध धर्म फैला। पूर्वी संसार आज भी, वर्तमान समय में भी जो ईस्टर्न वर्ल्ड है वो सब बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। उसमें चीन है, जापान है, ताइवान है, कोरिया है, हांगकांग, बर्मा, थाईलैंड और वियतनाम, ये सब बौद्ध धर्म को मानने वाले देश हैं। यहाँ तक कि श्रीलंका तक भी बौद्ध धर्म को मानने वाले देश हैं। फिर उसके बाद आए क्राइस्ट, ये आए वेस्टर्न वर्ल्ड में। जब पश्चिमी विश्व का विस्तार होने लगा तो वहां पर क्राइस्ट आए, और उन्होंने देखा कि वहां लोगों में आपस में बहुत वैर है, नफरत है, झूठ कपट है, तो उन्होंने उसके अनुसार ही अपना उपदेश दिया कि गॉड इज लव, गॉड इज ट्रुथ। उन्होंने कहा लव दाई नेबर एज यू लव योर सेल्फ, है ना, अपने पड़ोसी को भी उतना ही प्यार करो जितना कि आप अपने आप को करते हो। तो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई और आज भी सारा वेस्टर्न वर्ल्ड क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला है। उसमें यूरोप है, अमेरिका है, उसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मिडिल अमेरिका, सब क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले हैं। और आज दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है वो ईसाई धर्म है। और फिर उसके बाद मोहम्मद साहब आए और मोहम्मद साहब ने इस्लाम को रिफॉर्म किया आज से 1400 साल पहले मिडिल ईस्ट में, और मिडिल ईस्ट में इस्लाम का प्रचार हुआ, और जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं उसमें सऊदी अरब, बहरीन, टर्की, कुवैत, कतर, यमन, ओमान, सब मस्कट, ये सब मुस्लिम धर्म को, यूएई सब मुस्लिम धर्म को मानने वाले देश हैं। तो संसार अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में बट गया, और धर्मों के कारण क्या हुआ, अनेकता। अनेकता होने के कारण जो इतने मतभेद मतांतर हो गए तो संसार में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। एकता ही खत्म हो गई दुनिया में, और समय के चक्र के अनुसार वैसे भी आत्मा की शक्तियां क्षीण होती जा रही हैं, तो फिर संसार में इतने धर्म होने के बावजूद भी कौन सा युग आ गया, कौन सा युग आ गया, कलयुग। तो कलयुग में जो स्वास्तिक की भुजा है वो अपटर्न है। हाथ को इस पोजीशन में हम कब लाते हैं, कब लाते हैं, हाथ उठाना बोलते हैं ना, इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मतलब क्या होता है, मारा। हाँ, तो किसी को मारने पीटने के लिए हम हाथ उठाते हैं। तो ये कलयुग कौन सा युग हो गया, कलयुग होता है कलह कलेश का युग, क्योंकि आत्मा की कला जीरो हो जाती है, एक या दो कला रह जाती है या जीरो होती है, तो सारा स्थान शक्तियों का विकार ले लेते हैं। तो विकार प्रधान होती है आत्मा, पूर्ण पतित होती है, तो कोई घर ऐसा नहीं जहां लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई घर ऐसा नहीं जहां मतभेद ना हो, कोई देश ऐसा नहीं, सारा संसार ही युद्ध स्थल बन जाता है। तो ये कलयुग, इसलिए इसको कलयुग को हम काला युग भी कहते हैं, यानी मनुष्य अंदर में कुछ और बाहर में कुछ होते हैं, ये वो समय है। और जब विकार प्रधान है तो संसार में पापाचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, ये सब बढ़ने लगता है, और इसकी निशानियां धर्म पिताओं ने पहले से बताई कि आने वाला कलयुग ऐसा समय होगा। तो एक गीत आता है, हे राम चंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती आएगा। पूरे गीत में कलयुग की निशानियां, अभी पूरा गीत तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये जो पहली दो लाइन है उसमें भी मीनिंग है, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा, मतलब जो हंस प्रकृति के लोग हैं, हंस को सदाचारी पक्षी माना जाता है, वो दूध का दूध पानी का पानी कर देता है, यानी सच्चाई जिसको हम कहते हैं। तो ऐसे लोग जो सच्चे ईमानदार होंगे कलयुग में, वो अभाव में जिएंगे, है ना, हंस वैसे मोती चुगता है पर कहा दाना तिनका चुगेगा, तो ऐसे लोग अभाव में जिएंगे, और जो कौवा मोती खाएगा यानी जो कौवा प्रकृति के होंगे, यानी जो बेईमान होंगे, कपट करने वाले होंगे, वो समृद्ध होंगे, मोती खाएंगे माना संपन्न और समृद्ध होंगे। तो आज हम देख रहे हैं वही समय है। किसी को बोलो सच्चाई ईमानदारी पे चलो तो क्या कहते हैं, बहन जी कौन से जमाने की बात कर रहे हो आप, अगर हम सच्चाई से चलेंगे तो हम अपने परिवार में अपने बच्चों को भी पाल नहीं सकते हैं ना। तो ये वो समय कि जब जिन मूल्यों से मनुष्य को महान माना जाता था, उन्हीं मूल्यों से मनुष्य को कलयुग में मूर्ख माना जाता है। जो सच्चाई ईमानदारी त्याग सेवा भावना मनुष्य को महान बनाते थे, ये गुण अब कोई महत्व नहीं रखते। और फिर गुरु नानक देव जी ने कुछ निशानियां बताई, उन्होंने कहा ये वो समय होगा जब गाय विष्ठा में मुंह डालेगी, जब अन्न पुड़ियों में बिकेगा, दूध बॉटल में बिकेगा, सिद्धांत विहीन राजनीति होगी, मानवता विहीन विज्ञान, विवेक शून्य आनंद। तो देख रहे हैं हम, गाय विष्ठा में मुंह डालेगी, कचरे में मुंह डालती है गाय, पता नहीं क्या क्या खाती है आजकल, है ना, इसलिए लोग कहते हैं दूध मत पियो। हाँ, फिर अन्न पूड़ियों में बिकेगा, उनकी भाषा थी पूड़ी, पूड़ी माना पैकेट, आज सारे अनाज पैकेट्स में आ चुके हैं, मिलते हैं सभी पैकेट, ये सारा फूड जो है वो आजकल इसी में मिलता है। फिर दूध बॉटल में क्या, पानी भी बॉटल में आ चुका है अभी तो, और सिद्धांत विहीन राजनीति है, राजनेताओं के कोई सिद्धांत नहीं, वो कहते कुछ है और करते कुछ और है, मानवता विहीन विज्ञान, विज्ञान से मानवता नहीं आती है आज, विज्ञान से अहंकार आता है मनुष्य में, तो गुण विलुप्त होते जा रहे हैं। फिर विवेक शून्य आनंद है। आज का मनोरंजन किस स्तर का है हम सब जानते हैं, कैसा मनोरंजन करते हैं हम जिसमें कोई विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर उन्होंने एक अंतिम निशानी बताई, बोला वो निशानी कलयुग के अंत का प्रतीक है। कहा एक कुएं का पानी, चार कुएं का पानी एक कुएं में समाएगा, एक का चार में नहीं समाएगा। तो उनका कहने का भाव क्या था, एक माता पिता चार बच्चों की पालना करेंगे, उन्हें योग्य बनाएंगे, वही चार बच्चे जब बड़े हो जाएंगे कलयुग के अंत में वो अपने माँ बाप को नहीं पाल सकेंगे। तो वो समय आ चुका है, है आज वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं, इसीलिए खुल रहे हैं। और अगर चार बच्चे हैं तो माँ बाप को बांटते हैं, तीन महीना तुम, तीन महीना तुम, नहीं तो माँ को तुम, बाप को मैं, और नहीं तो फिर वृद्धाश्रम तो है ही है। तो कहते हैं जो मदर टेरेसा थी, वो मदर टेरेसा क्यों बनी, उसका कारण यही था। वो एक साधारण नन थी और एक मिशनरी स्कूल में पढ़ाती थी कलकत्ता में, लेकिन एक बार अपनी साथी नन के साथ वो मॉर्निंग वॉक पर थी तो उनको किसी के करहाने की आवाज आई। तो जब उन्होंने वो आवाज सुनी तो देखा कौन सी दिशा से आ रही है, तो दिखाई नहीं दिया कोई, लेकिन फिर आवाज आ रही थी। फिर उन्होंने देखा तो देखा कि एक कचरे के डब्बे से आवाज आ रही है। गए वहां तो कचरे के डब्बे में एक बूढ़ा जो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुका था और बदबू आ रही थी वो था उसमें। तो उसने पूछा कि आप कैसे कचरे के डब्बे में आ गए, तो उसने कहा मेरा बेटा मुझे मरने के लिए यहाँ छोड़ गया है, लेकिन वो मृत्यु भी इतनी निर्दयी है जो मुझे नहीं आती है। तो देखा उसको कोढ़ हुआ था और कोढ़ के कारण उसके हाथ पांव की उंगलियां गल गई थी और बदबू आ रही थी। तो उन्होंने फिर अपनी साथी नंस के साथ उससे को निकाला कचरे के डब्बे से, उसको लेकर आए और उसका इलाज शुरू किया, डॉक्टर को बुलाकर मरहम पट्टी। तो वो ज्यादा तो नहीं जिया, दो चार दिन में ही उसकी मृत्यु हुई, लेकिन उसने मरते समय भगवान को धन्यवाद दिया कि सारा जीवन मैंने उपेक्षित और घृणित जीवन जिया, लेकिन मरते समय भगवान को मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि कम से कम मृत्यु के समय तो मुझे ऐसा सहारा मिला, ऐसा मुझे प्रेम और करुणा का हाथ मिला, तो मेरा आगे का जन्म मैं समझता हूँ निश्चित ही अच्छा होगा। और फिर तभी से मदर टेरेसा को प्रेरणा आई और उन्होंने कोड़ियों के लिए एक ट्रस्ट बनाया और सारी उम्र उन्होंने जो कोड़ के रोगी थे उनकी सेवा की, और इसी के कारण फिर उन्हें नोबल पुरस्कार दिया गया जो हम सब जानते हैं कि वो। तो ये कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, ये सब जो भी प्रमाण है वो हमें बताते हैं कि हम कलयुग के भी अंत तक पहुंच चुके हैं और हर चीज अपनी अति में है, और जब अति होती है तो अंत को लाती है। तो जैसे रात की जो अति है वो आने वाले दिन का संकेत है, रात के 12 बजे हैं तो हमें पता है 12 बजने के बाद क्या होगा, दूसरा दिन शुरू हो जाएगा, लेकिन उस दिन को शुरू करने के लिए फिर सूर्योदय होना आवश्यक है, बिना सूर्योदय के दिन नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो कलयुग की रात्रि है, कलयुग की अज्ञान अंधकार की जो रात्रि है उसे दिन यानी सतयुगी दिन में परिवर्तन करने के लिए परमात्मा रूपी ज्ञान सूर्य को इस धरा पर अवतरित होना पड़ता है, और उसके ज्ञान के प्रकाश से ही यह ज्ञान अंधकार समाप्त होता है। लेकिन परमात्मा स्वयं तो निराकार है और वो गर्भ से जन्म नहीं लेते, मनुष्य की तरह उनका जन्म नहीं होता है, इसीलिए परमात्मा एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं जिसे वो प्रजापिता ब्रह्मा नाम देते हैं, और उनके द्वारा ही वो आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा हमें प्रदान करते हैं। तो वर्तमान समय हम जो भी ये ज्ञान और योग सीख रहे हैं, ये किसका दिया हुआ ज्ञान और योग है, स्वयं परमात्मा शिव का दिया हुआ ज्ञान और योग है जो वर्तमान समय इस सृष्टि पर अवतरित होकर के हमें ये ज्ञान और योग के द्वारा पुनः सर्वगुण संपन्न और पवित्र बना रहे हैं। तो इस समय को हम, ये जो वर्तमान समय चल रहा है जिसे हम परमात्म अवतरण का युग कहेंगे, ये संगम युग है। संगम माना मिलन, तो ये दो तरह से संगम है। एक तो आत्मा और परमात्मा का मिलन इस युग में होता है, क्योंकि परमात्मा इस युग में ही आते हैं और किसी युग में परमात्मा आते ही नहीं, तो इसीलिए आत्मा और परमात्मा का मिलन। और दूसरा है दो युगों का मिलन, कलयुग और सतयुग के बीच का ये समय है, तो इसीलिए भी ये दो युगों के संगम का समय, इसलिए ये संगम युग है। और ये बहुत छोटा युग है जिसे हम लीप युग कहते हैं, गुप्त युग है। दुनिया में तो कलयुग है, लेकिन जो परमात्मा के ज्ञान के अनुसार अपना जीवन और कर्म करते हैं उनके लिए ये संगम युग है। और यहाँ पर परमात्मा एक अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जैसे दुनिया में यज्ञ रचते हैं, लेकिन वो अग्नि कुंड का यज्ञ होता है जिसमें तिल जौ या और सामग्री हम स्वाहा करते हैं, लेकिन ये वो यज्ञ नहीं है, ये ज्ञान यज्ञ है जिसमें हम विकारों की आहुति देते हैं, यानी विकारों को स्वाहा करते हैं और उससे हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। जो आप सुन रहे हैं कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण होए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी हो, तो ये वर्तमान समय जो समय चल रहा है ये अति महत्वपूर्ण और अति मूल्यवान युग है। और ये युग पूरे कल्प की यानी पूरे सृष्टि की प्रारब्ध बनाने का युग है, क्योंकि स्वयं परमात्मा जो भाग्य विधाता है वो इस समय हमारा भाग्य बना रहे हैं। और इस समय के लिए ही हम कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इसी समय ही परमात्मा अवतरित होते हैं, तो इस समय हमने उनसे वो भाग्य ले लिया। कई बार कई मजाक में कहते हैं कि जब ब्रह्मा ने भाग्य बांटा तो आप सोए हुए थे क्या? हाँ, तो कौन सी नींद में सोए हुए थे? ये सोने जागने वाली नींद की बात नहीं, लेकिन जो परमात्मा ने भाग्य बांटा उस समय अज्ञान नींद में मनुष्य आत्माएं सोई रह जाती हैं और परमात्मा अपना कार्य करके चले जाते हैं, तो हमको वो भाग्य फिर नहीं मिल पाएगा। इसीलिए कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये समय इतना श्रेष्ठ और मूल्यवान समय है और थोड़ा ही समय हमें ये मिला है। अभी परमात्मा अवतरण हुए भी 89 इयर्स हो चुके हैं, तो बहुत गई थोड़ी रही है ना, क्योंकि संगम युग लगभग 100 वर्ष का समय है, तो उसमें से भी कितना समय हमें मिलने वाला है। और फिर हमारे जीवन का भी कोई गारंटी नहीं है, है ना। आज का जो समय है वो अकाले मृत्यु का समय है, कौन कब चला जाएगा कुछ पता नहीं होता है। तो इतना कम समय जो परमात्मा से हम अपना वो भाग्य प्राप्त करें। फिर कई भाई बहने कहते हैं अच्छा, जो भगवान है वो, उन्होंने बताया कि ये जो समय है, ये समय का जो परिवर्तन है, ये समय का परिवर्तन हो के जो सतयुगी सृष्टि आएगी, वो सतयुगी सृष्टि आने की कोई डेट तो बताई होगी। तो परमात्मा जो है वो हमें डेट नहीं बताते हैं, ये जरूर बताते हैं कि समय कम है, ये सावधानी हमें जरूर देते हैं, क्योंकि जो सृष्टि का परिवर्तन होगा वो परिवर्तन महाविनाश के द्वारा होना है। ये सृष्टि पुरानी हो चुकी है, और पुरानी हो चुकी है तो इसको तो नया नहीं बना सकते, तो जैसे कहा कि जो चीज को नया नहीं बना सकते उसे फिर विनाश करके फिर नया शुरू करना होता है। जैसे एक घर बहुत ही जर्जर हो चुका है तो फिर अगर नया बनाना है तो उसे तोड़कर ही नया बनाना पड़ेगा। अगर एक फसल पक चुकी है तो उसे जरूर काट देना पड़ेगा, तभी हम फिर नई फसल बो सकते हैं, नई फसल उसमें आएगी। ना, तो ये संसार का नियम है। तो इसी अनुसार ये पुरानी सृष्टि का पहले विनाश होगा और उसके बाद फिर नई सतयुगी दुनिया इस सृष्टि पर आएगी। तो ये भी कोई डेट डिक्लेयर नहीं है कि ये कब होना है, लेकिन उसकी सब तैयारियां हैं। तैयारियां हमें दिखाई देती हैं। आज हम देखते हैं प्राकृतिक असंतुलन है, पर्यावरण प्रदूषण इतना है कि धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है और उसके कारण जो पोल्स की बर्फ है वो पिघल रही है, तो सी लेवल बढ़ रहा है। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि समय रहते अगर हमने उपाय नहीं किया तो ये धरती ज्यादा समय नहीं चल सकती है, तो वैज्ञानिक भी ये कहते हैं। तो हम देख रहे हैं आज मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। हाँ, कहाँ कभी भूकंप आ रहे हैं, कभी बाढ़ हो रही है, कभी अकाल हो रहा है, और ये प्राकृतिक आपदाएं समय प्रति समय और बढ़ती जाएंगी। फिर दूसरी तैयारी हम देख रहे हैं एटॉमिक वेपन्स। आज दुनिया में इतने एटॉमिक वेपन्स हैं देशों के पास कि वो ऐसी एक दुनिया तो क्या कई दुनिया खत्म कर सकते हैं। लोगों में, देशों में कोल्ड वॉर चलती रहती है, वो कब हॉट वॉर में बदल जाएगी कह नहीं सकते। और आज के जो युद्ध होते हैं ना, वो मैदानों में नहीं लड़े जाते, वो आसमानों में लड़े जाते हैं, क्योंकि मिसाइल्स जो दागते हैं वो कंट्रोल रूम से दागी जाती है, बटन दबाते हैं और जहां उसको टारगेट करेंगे। अभी देखा ना हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो ड्रोन डाले जा रहे हैं टारगेट, जैसे वो ऑटोमेटिक ऑपरेट करते हैं ना उसको, कहां उसको डालना है तो टारगेट फिक्स करके डालते हैं, जहां डालेंगे वहां वहां खत्म। तो फिर कब किसका दिमाग खराब हो जाए कह नहीं सकते। तो दुनिया ऑलरेडी बारूद के ढेर पर ही बैठी है, तो ये भी तैयारी हम देख रहे हैं। और तीसरा है धर्म के नाम पर मारकाट, वो भी हम देखते हैं। आज आतंकवाद फैला हुआ है, उसका कारण कई देश इस आतंकवाद से जूझ रहे हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते हैं तो मारकाट करते हैं। तो फिर अभी कौन सा समय है? परमात्मा जो है, जैसे एक मौसम विभाग एक अपना सावधानी देता है कि तूफान आने वाला है, तो जो भी इस इलाके में रहते हैं वो सब सुरक्षित स्थानों पर चले जाओ ताकि आपकी जान माल बच जाए। तो जो समय रहते चले जाते हैं वो बच जाते हैं, तो ये भी वो समय है, क्योंकि तूफान आने से रोका नहीं जा सकता लेकिन तूफान की भविष्यवाणी जरूर की जा सकती है। तो ये भी ऐसे ही है कि समय बदलने वाला है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। हाँ, कोई भी रात को दिन होने से रोक सकता है, तो समय एक बदलने से कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी समय को नहीं रोक सकता, लेकिन समय से पहले उन्होंने सूचना दे दी हमें कि हम ऐसे समय के लिए तैयार हो जाएं। तो हम समय से पूर्व तैयार हैं, हम अपने आप को सोल कॉन्शियस बना लें, गॉड कॉन्शियस बनाएं, अपने आप को सर्वगुण संपन्न बनाएं, सोलह कला संपूर्ण, क्योंकि आत्मा ये कमाई अपने साथ लेकर जाएगी और उसी अनुसार उसे आने वाले युग में जन्म मिलेगा। तो जो हम ये लेकर जाएंगे, अगर सोलह कला संपूर्ण बन गए तो सतयुग के आदि में हम आएंगे, और जो सतयुग के आदि में आएंगे वो पूरे कल्प में पार्ट बजाएंगे, 84 जन्म होंगे उनके। हाँ, तो कौन से समय में आना चाहते हैं? सतयुग के आदि में आना चाहते हैं या बाद में, बीच में? क्योंकि जो शुरू से अंत तक पार्ट बजाते हैं उनको हीरो एक्टर कहते हैं, और जो बीच बीच में आते हैं उनको साइड एक्टर कहते हैं, वो थोड़ा बहुत अपना रोल करके चले जाते हैं। हाँ, तो कौन से एक्टर बनना चाहेंगे इस वर्ल्ड ड्रामा के, हीरो एक्टर या साइड एक्टर? जो समझते हैं हम हीरो एक्टर बनना चाहेंगे वो हाथ उठाएं। देखो, मेजॉरिटी हीरो एक्टर बनना चाहते हैं। तो फिर क्या करना होगा? अभी से हमें वो पुरुषार्थ करना है। हाँ, तो जब जागे तब सवेरा। हाँ, अभी से हमें जब ये ज्ञान मिल गया, ये समझ मिल गई, परमात्मा ने हमें वो दिव्य बुद्धि दे दी, तो अभी से हम वो करेंगे तो हम अवश्य ही सर्वगुण संपन्न और सोलह कला संपूर्ण बनेंगे। लेकिन अगर हम अलबेले रहते हैं, समय को गंवाते हैं, तो फिर हो सकता है कि हमारी कलाएं कम रह जाएं, 8 कलाएं होंगी तो द्वापर युग में आना पड़ेगा। तो ये वो समय है कि हम फिर से अपनी अनादि स्थिति में आकर के अपने घर वापस जाएं, और परमात्मा के पास परम धाम में जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनकर के ही यहाँ से जाना होता है। उसके लिए योग बल, जैसे हमने सुबह भी बात की थी कि योग बल के द्वारा हम अपने पाप कर्मों को विनाश कर सकते हैं, या फिर सजा भोग करके भी हम अपने पाप कर्मों का विनाश करते हैं। तो ये हमारी चॉइस है कि हम परमात्मा के प्यार में, उसकी लगन में, उनसे योग लगा करके अपनी आत्मा को पावन बनाते हैं, या फिर हम जो भी हमारे पाप रह गए उनको इस तरह से खत्म करते हैं और फिर हम घर जाते हैं। फिर कई कहते हैं कि क्या हमें इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती? तो मुक्ति या मोक्ष नहीं मिलता है, क्योंकि हम इस वर्ल्ड ड्रामा के एक्टर हैं। तो मिनिमम भी एक जन्म इस वर्ल्ड ड्रामा में लेना होता है, क्योंकि आत्मा में कर्म करने के संस्कार हैं और वो बिना शरीर के कर्म कर नहीं सकती, क्योंकि अभिव्यक्ति तो शरीर के द्वारा ही होती है। तो मानो कोई व्यक्ति को विश्राम चाहिए तो वो कितना विश्राम लेगा। आज किसी को फ्रैक्चर हो जाता है और उसको डॉक्टर कहता है 3 हफ्ते बेड पर रहना है, पैर में फ्रैक्चर है तो 3 हफ्ते नहीं चलना है, नहीं तो हड्डी नहीं जुड़ेगी। तो उसमें 1 हफ्ता 10 दिन तो बड़ा अच्छा लगता है, बेड पर सारी सेवा हो रही है, खाना मिल रहा है, पूछताछ हो रही है। फिर 10 दिन के बाद बोर होने लगते हैं, कब ये प्लास्टर खुलेगा, कब हम चलेंगे, कब हम काम करेंगे। और मानो सारी रात आपने अच्छी नींद की, फिर दिन में भी कोई बोले आपको सो जाओ, सोएंगे? क्योंकि जो विश्राम चाहिए था वो हमें मिल चुका। तो आत्मा के लिए भी परम धाम विश्राम का स्थान है, और जब वो पूरा हो जाता है तो वो अपना धरती पर फिर से आना चाहती है। तो इसीलिए एक जन्म भी इस सृष्टि में होता है, और मैक्सिमम 84 जन्म। तो ये हमारा पुरुषार्थ है कि हम इस सृष्टि चक्र में कितने जन्म लेने के योग्य बनते हैं। और मुक्ति से श्रेष्ठ जीवन मुक्ति है। अगर हम मुक्ति में जाना चाहते हैं उसकी बजाय, तो हम सतयुग में आए वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये जो समय की पहचान हमें परमात्मा ने दी, इस समय के अनुसार हमें परमात्मा की श्रीमत अनुसार राज्यों का अभ्यास करते हुए, श्रेष्ठ कर्म करते हुए, अपने जीवन को पुनः पावन बनाते हुए देवी देवताओं जैसा बनना है, और अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति। तभी हम 2 मिनट परमात्मा को याद करेंगे और फिर
टिक करती समय की सुइयां कहती बारंबार है, टिक टिक करती समय की सुइयां कहती बारंबार है, दिल की दुआएं सब पे लुटाओ अंत यही काम आए, ये घड़ी लौट ना आए, पल पल बहती कल कल करती समय की नदी।